मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 7 अक्टूबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना यह है कि एकेडमी ने अपने नेक्स्ट बैच की डेट डिक्लेयर कर दी है। हमारा जो नेक्स्ट बैच है वह 15 मार्च को शुरू होगा और 29 मार्च यानी कि 15 मार्च 2020 से लेकर 29 मार्च 2020 तक का बैच होगा और अभी उसके लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको ₹2000 का अभी डिस्काउंट दिया जाएगा। तो दोस्तों यह सूचना थी और अब मैं थोड़ी सी बात अपने उन प्यारे विद्यार्थियों से करना चाहूँगा जो अभी जो हमारी एकेडमी के जो क्लासेस होने वाली हैं 10 अक्टूबर को उसके लिए अपने घर पर या तो तैयारी कर रहे हैं या बस करने ही वाले हैं और यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले तो मैं आप सबको एकेडमी की ओर से आमंत्रित करता हूं और आप सबकी यात्रा शुभ हो और आप भोपाल बहुत अच्छे तरीके से सकुशल तरीके से पहुंचे इसके लिए माँ भगवती से प्रार्थना भी करता हूँ। देखिए यहाँ आप आएंगे और क्लासेस में हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, जो कुछ भी और व्यवस्थाएं होंगी उन सब के माध्यम से डेफिनेटली आपको प्रशिक्षित किए जाने की कोशिश होगी, हर संभव कोशिश होगी। प्रशिक्षित का मतलब है कि आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लायक बनाने की कोशिश होगी। लेकिन मित्रों यह एक तरफा नहीं होता है, मेरी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप ये जो 15 दिन का वक्त है इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि देखिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, दाखिला लिया है, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। आप यहां आ रहे हैं एक उद्देश्य को लेकर के आ रहे हैं और हम आपको बुला रहे हैं कि हम आपके उद्देश्य को पूरा करने में हम आपकी मदद करेंगे। यह एक कॉन्ट्रैक्ट है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दोनों के सहयोग से ही फुलफिल होता है, पूरा हो पाता है। आप कभी यह मत सोचिएगा कि चूंकि आपने तो फीस दे दी है आप जा रहे हैं अब सारा दायित्व एकेडमी का होगा, नॉट एट ऑल। आपको भी उतनी ही मदद करनी होगी और आप हमारी जितनी मदद करेंगे डेफिनेटली एकेडमी उतना अधिक आपकी मदद करने की स्थिति में होगी। यूं कह लीजिए कि जैसे ही अब आप अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे आपके प्रशिक्षण की भी शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है व्यवहार, शिष्टाचार, जो आपके मस्तिष्क के संतुलन को रिफ्लेक्ट करती है। दोस्तों जब आप अपने घर से निकलेंगे अपने दिमाग में ले आइए कि मेरी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, मैं भोपाल जा रहा हूं और एक बड़े मकसद के लिए जा रहा हूं। IAS बनना एक बहुत बड़ा मकसद है, मैं एक बड़े मकसद के लिए जा रहा हूं और बड़ा मकसद पाने के लिए मुझे अपने विचारों को भी बड़ा करना पड़ेगा, अपने व्यवहार को भी बड़ा करना पड़ेगा। दिमाग में बार बार आप ये बात लेकर आइए। आप अपने घर से निकलेंगे, चाहे आप ऑटो लेकर के निकलें या आपके घर के कोई सदस्य आपको स्टेशन छोड़ने जाएं, बार बार अपने दिमाग में इस बात को दोहराइए कि मुझे अपना व्यवहार संतुलित रखना है, शिष्टाचार का प्रमाण देना है। कहीं भी आपको अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, चाहे सामने वाला कितने भी बदतमीजी से पेश आए। आप इत्मीनान से ऑटो लीजिए, उससे बहुत अच्छे से बात कीजिए, ऑटो जब आप पहुंचा देता है तो उसको धन्यवाद कहिए, थोड़ा सा समय से पहले पहुंच जाइए स्टेशन या बस स्टैंड जहां आप जा रहे हैं, बड़े इत्मीनान के साथ आप ट्रेन में चढ़िए, धक्का मुक्की मत कीजिए, ट्रेन काफ़ी देर तक रुकती है, हड़बड़ाइए मत, आराम से चढ़ने के बाद अपने सीट पर जाइए, वहां दूसरे लोग होंगे, बड़े लोग होंगे, उनका अभिवादन कीजिए और बाकायदा आराम से बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए। अगर कोई बूढ़े व्यक्ति हैं, कोई महिला हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, जब भी स्टेशन कोई आता है आप नीचे उतर रहे हैं उनसे बाकायदे पूछिए कि क्या आपके लिए पानी लाऊं या कुछ आपको मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बताएं। और अपनी जितने भी आप सद्व्यवहार का परिचय दे सकते हैं, अच्छे आचरण का परिचय दे सकते हैं, परिचय दीजिए। अपने दिमाग से हर तरह की आशंकाओं को निकाल दीजिए कि वहां क्या होगा, जहां हम जा रहे हैं पता नहीं क्या होगा, सब चीजों को खत्म कर दीजिए। आप जब तक यहां पहुंचेंगे पाएंगे कि कितनी सारी आशंकाएं तो आपकी फालतू की थी, और आप चाहें तो अपनी आशंकाओं की बेहतर होगी कि एक सूची बना लीजिए और यहां आने के बाद फिर उसको चेक कीजिए कि आपकी कितनी आशंकाएं उसमें से सही हुई हैं। याद रखिए कि आपकी जो जर्नी है इस जर्नी का भी आपको आनंद लेना है, इसे बोझ मत समझिए कि यार जो कुछ भी होना है वो तो भोपाल जाकर के ही होना है, ये कहाँ सिर दर्द है, रात में नींद नहीं आ रही है, नॉट एट ऑल, भूल जाइए। ये जर्नी भी आपकी ट्रेनिंग है, जैसे जीवन की एक यात्रा होती है यह भी एक बदलाव की यात्रा है, इसे आप बदलाव की यात्रा मान करके चलिए। परेशानियां होंगी, कोई बात नहीं, जीवन का हिस्सा है, वही तो हमें मजबूत बनाती हैं। जब आप भोपाल पहुंच जाएं तो बकायदे आपको कहां उतरना है सूचित कर दिया गया है कि आपको भोपाल स्टेशन उतरना है या हबीबगंज उतरना है, वहां इत्मीनान से उतरिए, धक्का मुक्की मत कीजिए। दूसरों को अगर मदद कर सकते हैं उतरने में तो आप मदद कीजिए। इसके बाद इत्मीनान से बाहर आइए, कोई बात नहीं, अभी हड़बड़ी है, बहुत भीड़ भाड़ है, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा देर रुक जाइए, ऑटो वाला आएगा, उससे बात कीजिए, दो चार लोगों से बात कीजिए, आपको सही कीमत मिल जाएगी, उससे भी बहुत अच्छे से व्यवहार कीजिए। बकायदे अच्छे से व्यवहार जब आप करेंगे तो देखेंगे कि ऑटो वाले के व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया है। इसके बाद उन्हें बताइए कि आपको कहाँ जाना है, आप वहाँ पहुँचेंगे, अगर उस स्थान को ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप कोशिश कीजिए कि आप वहाँ तक पहुँचे, लोग बताएंगे कि भाई ये जगह कहाँ है। ये नहीं कि फट से आपने फ़ोन मिला लिया एकेडमी की, हमको तो ये स्थान नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, वो स्थान है, अगर लिखा गया है तो स्थान है। आप कोशिश कीजिए, अपने अंदर की उस कोलंबस की यात्रा को आपको जागृत करना है कि नहीं मैं ढूंढूंगा, ढूंढिए, इसके बाद जाएंगे वहां, फिर वहां मैनेजर मिलेगा, नमस्ते कीजिए, बताइए कि मैं एकेडमी फॉर एक्सीलेंस की तरफ से आया हुआ हूं और मेरा ये रूम नंबर है। बकायदे इत्मीनान से, बड़े प्रेम से, आपके व्यवहार से वो प्रभावित होगा और अगर आपने उसको प्रभावित कर लिया तो 15 दिन वो आपकी मदद करेगा। आप ये मत सोचिए कि अरे अरे बराती हम तो हैं और हम हमारी देख रेख करनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, नॉट एट ऑल। आप प्रेम से बात कीजिए, सम्मान के साथ बात कीजिए, अगर आपको प्रेम पाना है और सम्मान पाना है तो। इसके बाद आप आराम से जाकर के वहां रहिए, पहुंचते साथ ही आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए, भूलिए मत कि मैं बहुत अच्छे तरीके से पहुंच गया हूं, मैं सेटल्ड हो गया हूं। इसके बाद आगे के सारे कार्यक्रमों के बारे में आपके पास जानकारी है, आप एकेडमी पहुंच जाइए। इसके बाद हम लोग मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन मित्रों आपको इस अपनी जर्नी को याद रखिए कि ट्रेनिंग का एक बहुत अनिवार्य हिस्सा बनाना है। आपके व्यवहार में वहीं से परिवर्तन आ जाना चाहिए जब से आप घर से चलेंगे, आपके विचारों में भी परिवर्तन आ जाना चाहिए जब से आप घर से चलेंगे, राइट? ये आपके लिए है, ये ट्रेनिंग आपके लिए है। जो बदलाव होना है वो आप में होना है, जो पाना है वो आपको पाना है। तो पाने के लिए आपको अपनी झोली को बड़ा करना होगा। तो दोस्तों ये मुझे आप सबसे कुछ अपील करनी थी, आप आइए, आप सभी का स्वागत है। 10 तारीख की सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें होंगी और एक दो दिन तक नहीं 15 दिनों तक बातें होंगी। तो ये कुछ बातें मुझे आप सबसे करनी थी आज के। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। मुख्य विषय के तहत दोस्तों मैं आप सबसे भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है उनके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन दो तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए, उधर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। देखिए, एक खबर आपने अभी दो एक दिन में पढ़ी होगी, छुट्टियों के दिन में भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा जो कॉलेजियम है ना, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति जी को भेजता है, फिर राष्ट्रपति जी उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं, तो कुछ नाम ऐसे थे जिन्हें सरकार ने वापस कर दिया था, लेकिन कॉलेजियम में ने फिर से जो वही नाम ज्यों के त्यों सरकार के पास वापस भेज दिए हैं। अब आप देखिए कि ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। वो इस तरीके से कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, क्या इस घटना में आपको न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सरकार द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप की कोशिश का कोई झलक दिखाई देती है? बस मैं इतना ही कह के इसे समाप्त करूंगा। इस बार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो पेपर्स आए हैं वो थोड़े से डिफरेंट शेड लिए हुए हैं, इस पर आप विचार करें। इसी तरह की एक और घटना घटी है। आपको मालूम है कि 49 जो हमारी कंट्रीज के बहुत ही एमिनेंट लोग हैं, जिसमें कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ लेखक हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को और ये कहा था कि हमारे यहाँ जो भीड़ की हिंसा हो रही है ये सही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली फिर बाद में अभी दो तीन दिनों पहले ही उन पर एक मुकदमा कह लीजिए कि दायर किया गया, मुकदमा नहीं कहना चाहिए, अभी FIR दायर की गई है और उसमें इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया है और साथ ही साथ कि ये शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के पूरे देश में एक हड़बड़ी सी है, खलबली सी है कि ऐसा कैसे किया गया, कैसे कहा जा सकता है। अब ये देखिए कि एक घटना है। अब इस घटना में फिर से दो तीन चीजें निकलती हैं। सिटीजन चार्टर, सिविल सोसाइटी, चलिए हम सिटीजन चार्टर को इसमें नहीं लेते, हम सिविल सोसाइटीज, सिविल सोसाइटीज एक हिस्सा, इन 50 लोगों को आप सिविल सोसाइटी मान सकते हैं। इन्होंने एक अनुरोध किया। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। और इन्होंने ऐसे समय में नहीं लिखा है ये पत्र जबकि पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ हो, क्योंकि अगर पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो डेफिनेटली ये हमारी अभिव्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, आपको मालूम है कि ये प्रतिबंधित हो जाता है। ऐसा भी कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी है ही कि वो अपनी बात कहें, और वो प्रधानमंत्री जी को का ध्यान केवल इस ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं। अब उनको अगर देशद्रोह और शांति का को भंग करने वाला माना जाता है तो डेफिनेटली यह एक विचारणीय प्रश्न है। तो दोस्तों, अब आप देखें कि इसमें भी आपको एक डिफरेंट किस्म का शेड दिखाई दे रहा है, राइट। न्यूज में आपने सुना होगा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह जी के बारे में कि उन्होंने एक मीटिंग ली थी और उसमें जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज हैं वो अलग से अपने आईएएस आईपीएस आईएफएस का जो कैडर होता है ऑल इंडिया सर्विसेज के, उसके लिए वो मांग कर रहे हैं। खैर, वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब आप तैयारी करते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो न्यूज से मत केवल ये मत समझिए कि उससे आपको कुछ चीजें पता लग रही है, नॉट एट ऑल। कुछ चीजें आपको रिविजन करने भी चाहिए, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। अब अगर आप नहीं जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास परिषद क्या है, इसके मंत्री कौन होते हैं, इसमें कौन कौन से राज्य हैं, इसका का क्या कार्य है, तो आपको चाहिए कि जब आया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लें और इसी बहाने आप उसे रिवाइज भी कर लेंगे। और आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारे जो हैं नॉर्थ ईस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट अब फोर फ्रंट में आ रहे हैं और एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज के मुख्य विषय में हम लोग भारत बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें करेंगे, तो आइए उस पर अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। आपको मालूम है कि अभी बांग्लादेश से यात्रा पर आई थी वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, और भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ साइन हुए हैं और कुछ बहुत अच्छी बातें हुई है जिसे बहुत ही ऐतिहासिक माना जा रहा है। मैं उनकी डिटेल्स पर नहीं जा रहा हूं, डिटेल्स आपको अखबारों में बाकायदे पढ़ने को मिल जाएंगे कि बाकायदे कुछ प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुए हैं, जो खासकर आपसी प्रोजेक्ट थे, जिसमें एक प्रोजेक्ट तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि हम बांग्लादेश से एलपीजी गैस मंगाएंगे, और बांग्लादेश के पास गैस का बहुत बड़ा भंडार है और हमको कितनी जरूरत है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा है कि जो बांग्लादेश के बंदरगाह हैं चट्टोग्राम और मोंगला, ये ओपन हो जाएगा तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सामान की आवाजाही होगी, तो ये दोनों के दोनों जो बातें हैं ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अब वो समय गया, आप इस बार के न्यूज जो हमारे पेपर से उठा करके देखिए तो एक्सटर्नल अफेयर्स पर भी, यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशन पर भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके अब शेड्स बदल गए हैं। नहीं पूछे जाएंगे कि क्या क्या समझौते हुए, इन समझौते के जरिए क्या हो रहा है। जैसे अगर यही पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे संबंध मूलतः हमारे उत्तर पूर्वी भारत के विकास की कुंजी है, वर्तमान के संदर्भ में इसे स्पष्ट कीजिए, तब आप देखिए कि अब ये जो संधि हुई है बांग्लादेश के साथ या हमारे जो संबंध बेहतर होते चले जा रहे हैं उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर पड़ेगा, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा होगा। तो दोस्तों, अब वह समय आ गया है जबकि आप तथ्यों को ध्यान में तो रखना होगा, क्योंकि बिना तथ्यों को ध्यान में रखे अगर आप अपनी बात कहेंगे तो बात बनेगी नहीं, लेकिन तथ्यों के साथ साथ उसका जो एक ओवरऑल जो एक इम्पैक्ट होता है या जो ओवरऑल जो एक तस्वीर बनती है वह भी आपको अपने दिमाग में लेकर चलना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि तथ्यों को याद रख करके लिखने की बजाय ये जो पैटर्न अभी दिखाई दे रहा है ये आपके ज्यादा हित में है, इसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और अब डेली ऑडियो लेक्चर में मैं उसके जो स्वरूप में परिवर्तन करने की सोच रहा हूं कुछ कुछ इसी पैटर्न पर होगा। और आपने देखा कि अभी मैं न्यायालय की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो मैंने शुरू में बात की उसका भी शेड आपको थोड़ा बदला हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। अब मैं स्वागत करता हूं अपने उन 13 नौजवान साथियों का जिन्होंने अभी एकेडमी की जो 3 दिन के बाद क्लास शुरू होने जा रही है उसमें अपना दाखिला लिया है और वो आने वाले हैं। इन मित्रों के नाम हैं राकेश कुमार भरतपुर राजस्थान, प्रेम कुमार पाल लखनऊ उत्तर प्रदेश, अरविंद कुमार सोपाल बिहार, दयापाल राजमहल झारखंड, सुमित शर्मा आगरा उत्तर प्रदेश, लल्लू कुमार वर्धन आपका गांव है मंसूर नगर जिला नालंदा बिहार, साधना भारती मधुबनी बिहार, अंकित कुमार पड़वार आपका गांव है आप हैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी मध्य प्रदेश, बलवीर सिंह फतेहपुर उत्तर प्रदेश, संगीता नागर इंदौर मध्य प्रदेश, आदित्य शाक्य आप हैं, आपका गांव है भैंसरोली, जिला मनी मैनपुर उत्तर प्रदेश, बलीराम कुमार राम आप हैं सारण बिहार से, और विकास सोनी खरगोन मध्य प्रदेश से। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के करेंट कंटेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, वह है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। इसके महत्व को आप जानते हैं कि हमारे गृहमंत्री जी ने कहा है कि इसकी बहुत जरूरत है, तो इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग का प्रश्न है, मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। कल दशहरे की छुट्टी है, आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और मेरी ओर से भी। अब मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।